ఓం శాంతి. ప్రిన్సిపుల్ ఓం శాంతి. ముస్కురాకర్ బోలో ఓం శాంతి. ఆజ్ అప్నా ఆజ్ జో ఈవినింగ్ కా సెషన్ హై ఉస్కా టాపిక్ హై ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ అండ్ జస్టిస్ ఫార్ ఆల్. ఆర్ ఇస్ సెషన్ కో లే రహే హై హమారే బీచ్ మే ఆదరణీయ దీదీ బైఠే హై డాక్టర్ రష్మి ఓజా. బహుత్ అచ్చీ బాత్ హై యే తాలీ ఇస్లియే బజీ హై క్యూంకి హమ్నే ఆదరణీయ దీదీ కో పహలే భీ బహుత్ సునా హై ఇన్ దో సెషన్ మే పర్ బహుత్ షార్ట్ మే క్యూంకి దీదీ కా జబ్ హమ్నే ప్రొఫైల్ దేఖా तो जो कुछ मेरे पास है ना वो उसका 1/3 से भी कम है. और मैंने दीदी से निवेदन किया कि मैं बहुत जल्दी पर संक्षिप्त में आपके जीवन की इतनी उपलब्धियों को सार गर्भित रूप में अवश्य बताऊंगी, तो कृपया मुझे इजाजत दें. तो दीदी मुंबई विश्वविद्यालय से विधि स्नातकोत्तर में स्वर्ण पदक विजेता है, साथ ही ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इनइक्विलिटी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है. शी इज करंटली चेयर प्रोफेसर ऑफ चीफ जस्टिस MC Chagla Chair established in the Department of Law University of Mumbai. Purv mein bhi Mumbai University mein interdisciplinary studies mein dean rahe hain. PhD law students ke guide hain. She is member of Maharashtra National Law University and standing advisory committee of Tata Institute of Social Science and Mumbai Academic Council member with College of Education. Inke dwara likhe gaye lekh evam article desh videsh ke journals mein prakashit hue. मुंबई उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में लगभग 12 वर्षों तक प्रैक्टिस की और सेंट्रल गवर्नमेंट में सीनियर काउंसिल रहे हैं. 98, 2002, 2003, 2004 इन सभी वर्ष में स्वीडन और अन्य कई देशों यूएसए वगैरह में इनकी प्रोफाइल प्रकाशित हुई है. 2005 में ब्लू बुक वुमेन ऑफ द ईयर. जून 2009 she was invited as speaker at the International Conference of Jurists for Judicial Reform organized by International Council of Jurists London. November 2010 mein UGC ke karyakramon ko coordinate kiya. 2011-12 mein state and accountability under international human rights law or women human rights aadi paper prakashit hue aur reproductive rights as human rights May 2012 mein शिक्षा रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ तथा अन्य कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सेशंस लिए और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स एंड देयर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस, चाइल्ड राइट टू सर्वाइवल आदि कई पेपर प्रकाशित हुए. आप रजिस्टर्ड एनजीओ ह्यूमन राइट्स एक्शन ग्रुप की चेयरपर्सन हैं और जुरिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेट हैं और लाइफ मेंबर हैं. और भी बहुत कुछ है पर समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ दीदी के लिए कुछ चंद लाइनें बोल के. आप ज्ञान का प्रयोग हो और राग हो विधान का, आप राज हैं वैराग्य का और प्रयास हो तुम त्याग का, वाणी का कौशल हो आप और बुद्धि की हो विशालता, लेखनी की धनवान हैं आप और विद्वता की हो विराटता, संकल्प में दृढ़ प्रतिज्ञा आप और ज्ञान में कमाल हो, हिम्मतों की बुलंदी तुम और संगम युग की मिसाल हो, निर्माणता का रूप रख विनम्रता का भाव भर, सबको ज्ञानामृत पिलाया भगवान को मन में रमाया, और रंग गए उसके प्यार में और लग गए परमार्थ में, कविता का ओजस्वी छंद तुम और साधना की राह हो, नियत की निर्भिकता मन तुम ईमान की पनाह हो, नूरे इलाही की पसंद तुम हमको भी तुम पे नाज है, आज स्वागत में तुम्हारे भाव भरे अल्फाज हैं, भाव भरे अल्फाज हैं. आदरणीय दीदी जी मैं निवेदन करूंगी कि दीदी जी को बैज पहना कर मैं दीदी को आगे माइक देती हूँ कि वो अपने वक्तव्य रखें. ओम शांति.
ओम शांति. सुप्रीम गॉड फादर शिव बाबा, एस्टीम डिग्नेटरीज प्रेजेंट एट द प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस, It's on value-based justice, the soul of law. All sisters and brothers who are present here, I mean the BK sisters and brothers. Om Shanti, Namaskar, and a very good evening to one and all. अभी अभी जो बहन ने इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने आपको बताया कि द थीम ऑफ दिस सत्र दिस सेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ मेडिटेशन एंड जस्टिस फॉर ऑल. तो प्रश्न यह उठता है कि इज देर अटॉल एनी इंटरसेक्शन और इज देर अटॉल एनी नेक्सस बिटवीन मेडिटेशन एंड जस्टिस फॉर ऑल. जस्टिस मैकेनिज्म क्या सिर्फ जजेस लॉयर्स क्लिनिकल लीगल एड एक्सेस टू जस्टिस लॉ स्टूडेंट्स मीडिएटर्स सिर्फ वो ही कर सकते हैं कि हम भी कर सकते हैं. एंड इज देर एनी इम्पैक्ट मेडिटेशन का कोई इम्पैक्ट जस्टिस फॉर ऑल पे आता है कि नहीं. इफ आई इंट्रोस्पेक्ट दिस क्वेश्चन कि मेडिटेशन एंड जस्टिस फॉर ऑल का क्या नेक्सस है तो मेरे ध्यान में यह दो घटना याद आती है कि एनीवन कैन डू जस्टिस टू ऑल. कल से हमने शिवानी बहन को सुना, इसके पहले भी कुछ पहले के सत्र में हमने देखा कि हम किस तरह से समाज को न्याय दे सकते हैं. तो ये जो उदाहरण, ये उदाहरण ही सिर्फ नहीं है, यह सत्य घटना है. हेनरी डर्बी, आप कभी भी देखोगे कहीं भी लिटरेचर में, हेनरी डर्बी नाम के एक प्रिंसिपल थे स्कूल के इन नॉर्थ चार्लेस्टन साउथ कैरोलिना में, जहां 95% स्टूडेंट्स बिलो पॉवर्टी लाइन थे. तो जब वो प्रिंसिपल थे और काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिनको सोने की जगह नहीं थी, खाना ठीक से नहीं मिल पाता, तो एज अ प्रिंसिपल वो रात को जब देखने जाते तो काफी दुखी हो जाते थे. और उनकी जो सैलरी थी एज अ प्रिंसिपल वो एडिक्वेट नहीं थी कि वो इन बच्चों के लिए कुछ न्याय कर सके. तो खुद बहुत ही बीमार थे, उनकी स्पाइन की सर्जरी हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि मुझे कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए करना है ताकि वो पेट भर के खा सके, ताकि वो उसी तरह एजुकेशन ले सके जिस तरह बाकी की स्कूल में होता है. और उन्होंने तय किया, एप्लीकेशन दी और वॉलमार्ट नाम के मॉल जो है, वॉलमार्ट, इट्स नोन एज वॉलमार्ट, जब भी आप हेनरी डर्बी का नाम गूगल पे टाइप करोगे तो वॉलमार्ट नाम आता है, इट्स अ मॉल. तो उन्होंने वहां नौकरी ले ली रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, ताकि वो कुछ इनकम इकट्ठा कर सके. अब देखने की बात यह है कि उन्होंने किसी से भी डोनेशन नहीं मांगा कि हमारे स्कूल हमारे बच्चों के लिए डोनेशन दीजिए, और खुद उन्होंने तय किया कि दिन भर प्रिंसिपल की जॉब करते रहे और रात को वॉलमार्ट में वो जो स्टॉक आता है सामान का वो शेल्फ पे रखना, सभी सामान अपनी जगह शेल्फ पे रखना, वो नौकरी उन्होंने ले ली रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक. ये काफी दिनों तक, काफी महीनों तक और सालों तक चला. खुद बीमार होते हुए भी वो काम करते गए. एक दिन एक स्टूडेंट ने उनको ये काम करते हुए देख लिया, अपने प्रिंसिपल को, तो उसने जाके क्लास में सभी स्टूडेंट से कह दिया कि हमारे प्रिंसिपल तो पूरी रात भर नौकरी करते हैं. और उनको जैसे ही ये न्यूज फैल गई, ये न्यूज बाहर भी गई, और फिर कई सारे बाकी के एनजीओ से, कई सारे कंपनीज से उनको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स डोनेशंस में मिला, और उनको एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वहां के गवर्नर मैकमास्टर ने दिया कि देखिए कि दिस कैन बी डन ओनली विद अ मेडिटेटिव माइंड. हम दो दिन से सुन रहे हैं कि व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म. तो मेडिटेटिव माइंड हम यहाँ बैठ के डेवलप कर रहे हैं एंड व्हाट हाउ अ मेडिटेटिव माइंड कैन इम्पैक्ट जस्टिस फॉर ऑल। तो ये एक एप्ट उदाहरण है कि कितने सारे बच्चों का उन्होंने भविष्य बनाया और वो बच्चे आगे चल के कहीं विद्वान हुए, अपने अपने फील्ड्स में आगे आ गए। उसके लिए भाव होता है। इट्स ओनली मेडिटेशन विच कैन इनकल्क और इम्बाइब कॉम्पैशन, लव, हैप्पीनेस फॉर अदर्स, जस्टिस फॉर अदर्स। दूसरी सत्य घटना, ला गार्डिया जो कि न्यूयॉर्क के फॉर्मर मेयर थे, ही वंस प्रिसाइडेड ओवर द पुलिस कोर्ट एज अ जज। और जब वो बैठे थे पुलिस कोर्ट में तो एक बहुत ही बूढ़ा इंसान जिसके फटे हुए कपड़े थे, बिल्कुल झुका हुआ था, एकदम बूढ़ा सा इंसान, उसको दोनों तरफ से पुलिस कांस्टेबल ने पकड़ के रखा था और उनको लाया गया। तो पूछा गया कि इनको क्या जुर्म किया है, व्हाट क्राइम हैज ही कमिटेड। तो पुलिस ने बयान दिया कि ही हैज गॉन टू अ शॉप एंड स्टोलन अ लोफ ऑफ ब्रेड, उसने एक ब्रेड चोरी की है दुकान में से। तो वहां एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ लिटिगेशन नहीं होती और उस जैसे ही पुलिस ने कहा कि उसने चोरी की है तो जज ने उसकी तरफ बहुत ही शांत दृष्टिकोण से देखा और उन्होंने उनको देखो कैसे एड्रेस किया कि जेंटलमैन, लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स विदाउट एनी एक्सेप्शंस, क्योंकि कानून में कोई एक्सेप्शंस नहीं होता, जुर्म तो जुर्म होता है चाहे किसी ने भी किया, और इसीलिए मुझे सजा सुनवानी पड़ेगी। आई एम इम्पोजिंग अ फाइन ऑफ $10 ऑन यू, $10 में फाइन इम्पोज करता हूँ फॉर स्टीलिंग अ लोफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम अ शॉप। वो बूढ़ा इंसान ने अपनी सजा सुनी, जिसके पास 10 सेंट्स भी नहीं थे वो $10 कैसे दे पाएगा। वो थर थर कांपने लगा, वो बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था, एकदम ज्यादा घबरा गया और कुछ बोला नहीं, एकदम वैसे ही खड़ा रहा। तो जज ने कहा मुझे पता है तुम्हारे पास $10 नहीं है एंड देयरफॉर आई एम डिपॉजिटिंग दोस $10 ऑन योर बिहाफ। तुरंत ही जज ने अपने पॉकेट में से $10 कोर्ट में डिपॉजिट कर दिए और फिर जो कोर्ट में सारे मौजूद थे उनकी तरफ देखते हुए जज ने कहा द मैटर डजंट एंड हियर, आई शैल नाउ हैव टू रेमिट दिस फाइन। मैं यहाँ कोर्ट में मौजूद हर एक इंसान पे 50 सेंट्स फाइन लगाता हूँ, क्योंकि वो उस शहर में रह रहे हैं जहाँ एक बूढ़े, एन ओल्ड एंड अ फीबल पर्सन, हैज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू स्टील अ लोफ ऑफ ब्रेड खाने के लिए फॉर हिज सर्वाइवल एंड फॉर सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली। तो हैट, वहां हैट चलाने की सिस्टम होती है, वो चलाई गई। एवरी वन डिपॉजिटेड 50 सेंट्स, टोटल गिना गया, इट वॉज $47.50 जो तुरंत ही वो उस बूढ़े इंसान को दिए गए, हु लेफ्ट द कोर्ट रूम वेरी हैप्पीली एंड पीसफुली। कौन ऐसे कर सकता है? ये एक मेडिटेटिव एंड फोकस्ड माइंड ही कर सकता है जो अपने आप को उस जगह पर रख के सोच सके कि हम किस तरह से ट्रांसग्रेसिंग द लॉज, ट्रांसग्रेसिंग द कन्फाइंस ऑफ लॉ, अगर हमें न्याय देना है, कॉम्पैशनेट जस्टिस करनी है, तो वो इस तरह से हो। और ये सत्य घटना है, ये कोई फिक्टिशियस स्टोरी नहीं है। तो ये दो एप्ट एग्जाम्पल है कि जस्टिस फॉर ऑल की जब बात आती है तो हम में से कोई भी कर सकता है। मैंने जब 1988 में पढ़ाना शुरू किया था लॉ स्टूडेंट्स को, तो मुझे वेरियस सब्जेक्ट्स अलग अलग दिए जाते थे। मुझे पता है कि लॉ डजंट पनिश अ पर्सन फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर कोई किसी इंसान को मारपीट, बिना वजह से इनोसेंट इंसान को मारपीट हो रही है और मैं रास्ते में चल रही हूँ और मैं हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं अपने काम पे चली गई, देख के हंस के चले गई, लॉ कैन नॉट पनिश मी इवन इफ आई हैव विटनेस द रॉन्ग कमिटेड। So it punishes only if it fits within the confines of the offense as such. तो वहां से लेकर डेवलपमेंट्स होते गए और आज के युग में इन दिस करंट सिनेरियो इट्स एन इरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रोबोट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात आती है इट्स क्रीपिंग इनटू द लीगल सिस्टम एज वेल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एज वेल इट्स क्रीपिंग इनटू ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स तो क्या यह बुरी बात है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होना और अगर हमें काम में आता है जो चीज इंसान 20 घंटे में करता था वो 20 मिनट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देती है इट इज गुड बट वन थिंग इट लैक्स और ये काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपेक्स कोर्ट के जजेस ने भी कहा है इट लैक्स द बेसिक वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग सो कॉम्पैशन हैप्पीनेस पीस यू नो लव फॉर ईच अदर ये सब चीज इट्स अ मशीन एंड इट लैक्स ऑल दीज क्वालिटीज हम उन्नति काफी सारी करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विद दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉम्बे में मैं रहती हूं मैं देखती हूं कि पीपल गो फॉर रोबोटिक सर्जरीज एंड इट दोज आर ऑल सक्सेसफुल सर्जरीज इट हैज डन अ ग्रेट सर्विस इन फ्यू ऑफ द फील्ड्स एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग में कुछ फील्ड्स में काफी सारी सर्विसेज हुई है लेकिन इफ इट कम्स टू अ लीगल फील्ड इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम दिस मशीन लैक्स कॉम्पैशन प्यार जो हमारी शिवानी बहन ने कहा है यू नो व्हेन वी हैव टू डू जस्टिस टू द पीपल आई थिंक दीस आर द वैल्यूज विच वी नीड टू इम्बाइब विद इन अवर सेल्फ आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि विद दीस एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स एआई पावर्ड रोबोट साउथ कोरिया में रोबोट ने 6th फ्लोर से सुसाइड कर दिया It's a robot and it committed suicide by jumping from the 6th floor. क्यों? क्योंकि जैसे हम इंसान में limitations होते हैं AI में या robot में भी limitations होते हैं हम 24 घंटे उनको data feed करते ही जाएंगे और वो इतना exhaust हो जाता है कि a robot committed suicide. AI powered robot committed suicide from the 6th floor. And this is a true incident that happened in South Korea. So, hame dekhna hai ki and it can be very disastrous. Ye koi insaan nahi hai jis tarah mere paas haath pair hai. They possess artificial limbs. Jo robot suicide kar sakta hai, wo murder bhi to kar sakta hai. तो यू नो स्ट्रैंगुलेटिंग अ पर्सन अगर उनको कहा जाएगा उनको अगर इंफॉर्मेशन दी जाएंगी इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी इट कैन कमिट अ मर्डर आल्सो वेरी इजीली सो इट कैन प्रूव आउट टू बी वेरी वेरी डिजास्ट्रस प्रश्न यह उठता है कि आर वी इंटरेस्टेड इन एआई जब न्याय की बात आती है मेडिटेशन What linkage does meditation, has it got any linkage with AI? Will AI approve meditation and accordingly it may take decisions on its own and do justice? So, hame yah dekhna hai ki with this, if we make use of this AI chat box, hame avashyakta hai ki whether the fact ground reality after research is ki AI is more interested in you. आप फोन उठाएंगे आप इट्स अ यूट्यूब या गूगल में आप जाओगे और आपको कुछ इन्फो मैं देखती हूँ टेलीविजन पे तो अभी बहुत एडवर्टीजमेंट्स आती है एआई जेमिनी मुझे प्रश्न पूछना है विद इन फ्यू सेकंड्स यू गेट योर रिप्लाई यू नो रिसर्च स्टूडेंट इज ऑल्सो सेंसिटाइज्ड कि आप रिसर्च करो एक्चुअली दैट विल ब्रिंग अबाउट अ डिक्लाइन इन द रिसर्च कैपेबिलिटी ईदर ऑफ अ जज अ लॉयर अ लॉ स्टूडेंट अ रिसर्चर एज सच एंड हो सकता है एक्चुअली एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन अ डेवलप्ड नेशन के एक ओनर ने कहा है कि आज से लेके 15 साल के अंदर या विद इन अ फ्यू इयर्स सारे व्हाइट कॉलर्ड जॉब्स चले जाएंगे. सो व्हेन आई से नॉट क्राइम्स, व्हाइट कॉलर्ड जॉब्स, तो अगर व्हाइट कॉलर्ड जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे तो उसमें डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, एडवोकेट्स भी आ जाते हैं, जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म्स भी आ जाते हैं, तो वो करेंगे क्या अपने सर्वाइवल के लिए. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्राइम्स जो कि गुनाह है दैट विल मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली, मीनिंग वेरी वेरी रैपिडली, क्योंकि सभी को अपना सर्वाइवल तो करना ही है. दैट इज वॉट द रिसर्च सेज, दैट्स नॉट वॉट आई से. तो हमें यह सोचना है कि टूडे वॉट इज द नीड ऑफ द टाइम. इट्स समवेयर यू कीप इम्बाइबिंग वैल्यूज, यू नो, ट्राई टू, एज यू हैव बीन टोल्ड, आज 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में आपसे कहा जाता है और आपके मन में ये बिठाया जाएगा कि ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट और इंडिपेंडेंटली आप डिसाइड करो कि मेरे काम की चीज क्या है तो मैं, और कितनी अच्छी है तो मैं वो ही लूं. जब मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही थी, सो आई वॉज जस्ट किंग ऑफ द न्यूज रिपोर्ट जो मैं वहां से न्यूज़पेपर में पढ़ के आई थी. एक तो है जो लेटेस्ट हरीश राणा का यूथेनेशिया का केस, तो मैंने पढ़ा, मैंने कहीं यूट्यूब की कुछ क्लिप्स में भी देखा कि अपेक्स कोर्ट ने परमिशन दे दी क्योंकि उसके खुद की लिविंग अ वेजिटेटिव एग्जिस्टेंस, ही इज अ कोमाटोस पर्सन, और उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम वेंटिलेटर हटाया जाए. और पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन तो वैसे ही दी थी जब अरुणा शानबाग का केस हुआ था. तो हम एडवांसमेंट्स के साथ साथ किस दिशा में जा रहे हैं, उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाले गए. आजकल काफी सारी यह भी चर्चा हो रही है, और एक मशहूर मेडिकल डॉक्टर जो आज भी जीवित ही है, उसने, एंड वेरी एमिनेंट डॉक्टर लोपा मेहता, उन्होंने अपना लिविंग विल बनाया कि कभी किसी दिन, मैंने काफी सारी पैसे कमाए हैं मेरी लाइफ में, काफी सारी पोजीशंस होल्ड की है मेडिकल फील्ड में, बट कभी भी ऐसी अवस्था आई कि अगर मैं बीमार पड़ूं और मुझे अगर हॉस्पिटल में ले जाने की आवश्यकता हुई तो प्लीज मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना. अगर डॉक्टर एडवाइस करे कि वेंटिलेटर पे रखो, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखो, तो मैं विल बनाती हूँ, लिविंग विल, दैट आई शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी ऑफ दीज मेडिकल ट्रीटमेंट्स. अपने आप मेरी लाइफ नेचुरल डेथ से जाने दो. तो दिस इज परमिसिबल. हमारे देश में स्टिल इट इज अ कंटेंशियस इश्यू कि हम लिविंग विल बना सकते हैं और इसकी एफिकेसी क्या है, ऑथेंटिसिटी ऑफ लिविंग विल्स क्या है. तो ये हरीश राणा के केस में, ओके, हमारी बीके बहने ही गई थी. देखिए, उसकी जब आखिरी सांसें चल रही थी तो उसको योग, ज्ञान, बाबा की याद दिलाई गई ताकि, यू नो, हिज लास्ट ब्रेथ ऑल्सो ही ब्रीथ्स पीसफुली बाबा की याद में. तो ये एक महत्व की बात है कि मेडिटेशन एट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, व्हाट इम्पोर्टेंट रोल डज इट प्ले. शिवानी दीदी ने बताया कि इट इज, बॉडी इज मॉर्टल बट इट्स द सोल विच इज इमॉर्टल, और वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है. इफ अ पर्सन हैज अ पीसफुल डेथ, जैसे डॉक्टर लोपा मेहता ने डिसीजन लिया, तो दूसरे जन्म में भी वो जब जन्म लेंगे तो इट विल बी अ पीसफुल बर्थ विथ सम वैल्यूज ऑफ पीस, जो कि ये आर्टिफिशियल डिवाइसेस नहीं कर सकते. दूसरा केस जो मेरे ध्यान में बहुत ही थोड़ा सा सेंसिटिव है, और मैं कुछ अपने ओपिनियन नहीं दूंगी, मैंने जो पढ़ा है, जो सुनती हूँ, वही मैं आपसे कह रही हूँ, वो है ट्विशा शर्मा का केस जो अभी अभी काफी चर्चित हुआ है. शी वॉज अ मिस पुणे मॉडल एंड शी वॉज डूइंग एमबीए, शी इज एन एमबीए प्रोडक्ट, और शी मैरिड अ पर्सन जो कि एक वकील है जिसने भारत देश के मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी दैट्स द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया बैंगलोर में जो सबसे पहले स्थापित हुई थी वहां का वो प्रोडक्ट है उसका हस्बैंड। उनकी जो मदर इन लॉ है इज अ रिटायर्ड जज। क्या केस है, कौन गलती किसने की है, आई थिंक आई हैव नो राइट टू स्पीक अबाउट इट, लेकिन इस इंस्टेंस क्योंकि आप सबको पता है द्विषा शर्मा का जो केस की अभी चर्चाएं चल रही है कि किस दिशा में हमारी न्याय के जो रक्षक है किस दिशा में हमारी एडवांसमेंट लाइफ की जा रही है। मैं बॉम्बे में हूं, मैंने सुना था जो बॉम्बे के सबसे बड़े और ये एक ओपन बात है नेफ्रोलॉजिस्ट है बॉम्बे हॉस्पिटल के वेरी प्रोमिनेंट, मैं नाम नहीं दूंगी क्योंकि उनके खिलाफ केस मैंने लड़ा था नेशनल कंज्यूमर कमीशन में और हम जीते भी थे। उनकी करप्शन के इतने केसेस है कि वो अपॉइंटमेंट्स नहीं देते थे और अंडर टेबल पैसा लेते थे, तो किसी ने अटेम्प्ट किया था कि उनके उंगलियां काट दी जाए क्योंकि उसी हाथ से वो पैसे लेके फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वरना वो पेशेंट को अपॉइंटमेंट्स नहीं देते। तो ये इस युग में कलयुग, जैसे आपने सुबह सुना कि चार युग, इस कलयुग में अगर हम देखें तो विथ ऑल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज वी आर एंजॉइंग ऑल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। जब मैं स्टूडेंट थी तो ऐसा कुछ डिवाइस मोबाइल होगा जिससे वी कैन कनेक्ट टू द वर्ल्ड वाइड, हमें कभी पता भी नहीं था कि ऐसा डिवाइस छोटा सा होगा कि यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ टू द एंटायर वर्ल्ड एज सच। लेकिन आज हम देखते हैं तो एज शिवानी दीदी से कि एक बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है और वो सुसाइड भी कर देते हैं अगर उसका मोबाइल छीना जाए, वो घर पे तोड़ फोड़ टेलीविजन ये वो सब तोड़ देते हैं। तो किस दिशा में हम जा रहे हैं, वी एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, एज जजेस ऑफ लॉ, एज टीचर्स ऑफ लॉ, एज एडवोकेट्स, एज काउंसिल्स, हमारा क्या कर्तव्य बनता है और हम कैसे अपने आप को बैलेंस्ड रखें विथ मेडिटेशन। कुछ दिन अभी शायद एक हफ्ता ही हुआ होगा, एक हफ्ता पहले मैंने न्यूज रिपोर्ट पढ़ी थी कि द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्होंने कहीं वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, उन्होंने लॉयर्स को कॉकरोचेस कहा था, कॉकरोचेस, और वो बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि हाउ कुड अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एड्रेस लॉयर्स। इट वॉज नॉट इन दैट मीनिंग। अगर आपने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जस्टिस सेतलवाड़ कमिटी रिपोर्ट काफी साल पहले भी पढ़ी होगी तो लॉयर्स वेर रेफर्ड एज पैरासाइट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज जो डिग्री उनको मिली है उन्होंने उस डिग्री का सम्मान नहीं किया, उनकी जो वैल्यू सिस्टम है वो घटते 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 इतनी घट गई कि मेरे जैसे जहां मैं बॉम्बे में रहती हूं कई कोर्ट्स हैं जहां वकील की मारामारी होती है रास्ते के बीच में कि मेरे क्लाइंट छीन लिया एफिडेविट्स एग्जीक्यूशन एटेस्टेशन के लिए। और आई डोंट नो बॉम्बे कोई आए होंगे, बॉम्बे ये देखिए कितना डीमोरलाइज्ड है, आउटसाइड दी बॉम्बे हाई कोर्ट प्रीमाइसेस यू विल सी बॉम्बे हाई कोर्ट विच इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट हाई कोर्ट, वहां आप व्हीकल्स देखेंगे जहां नोटरीज आपको मिल जाएंगे। This is the most respected profession. Most of our freedom fighters जो थे वो सारे law degree उनके पास थी, but उनकी जो degrees, उनका जो ज्ञान, उनकी जो qualifications थी that was not just for the self vested interest लेकिन वो society के लिए भी था। और मैंने एक अपने Bar Council of India के chairman जो है उनकी इंटरव्यू भी सुना, एक लॉ इंटर्न ने उनकी इंटरव्यू ली थी और वो यूट्यूब पे वायरल हुई थी कि सर द एक्यूजेशंस और द एलिगेशंस आर कि मोर देन and the judges all present here will please excuse me, there are always exceptions in every field. उस लड़की ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से पूछा कि देर इज 90% करप्शन इन जुडिशरी. तो BCI के चेयरपर्सन चेयरमैन ने कहा बिल्कुल ये बात सच है, हमारे पास तो रिकॉर्ड है, हमारे पास तो डिटेल्स है. हालांकि वो मैटर डिसाइड हुई कि नहीं, किसके फेवर में किसके फेवर में नहीं, हमारे पास काफी सारे ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जहां ये एक्यूजेशंस होते हैं. और कहा गया और उन्हीं ने कहा कि आज के दिन में, टुडे इज 30th of May 2026, आज के दिन में अबाउट 35-40% लॉयर्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट आर प्रैक्टिसिंग विथ अ फेक डिग्री. क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी यू नो इतनी बढ़ गई है कि योर डिग्रीज आर ऑल्सो एज अ ओरिजिनल है, यू नो वो फोटोस्टैट जैसे निकालो, एवरीथिंग सीम्स वेरी वेरी ओरिजिनल. और दे आर प्लानिंग टू रेफर वेरिफिकेशन एंड रेफर ऑल दिस वेरिफिकेशन ऑफ देयर डिग्रीज. और ये सारे वकील जो फेक वकील्स है उनको CBI में इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफर करना. तो देखिए कि तब के मॉरल्स, मैंने अभी आपको ला गार्डिया का हेनरी डर्बी का एग्जाम्पल दिया, जो मॉरालिटी 3 generations बिफोर थी उसमें से हम कितनी सीढ़ियां नीचे 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 उतरते आए हैं. और आज भी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि जब हमारे में हम वैल्यूज इम्बाइब नहीं करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू जस्टिस towards all. Not necessary that I have to be a lawyer, not necessary that I have to, we permit even appearance in person. And judges are shocked many a times. Public interest litigation kaho ya kisi bhi forums mein kaho, people are permitted to appear in person. To jab tak hum values imbibe nahi kar sakenge, we will not be able to do something good to the other person as such. And that is very, very, very essential. Hamare Brahma Kumaris mein in the day-to-day, usko Murli kaha jata hai, Baba teaches us that only, that is sharir, it's at the most, if I'm very, very fit and fine, mentally as well as physically, yet exceeding 100 years is next to impossible. So, you know, I don't think a person can, or at the most 105, 110, 120, usse to jyada. So, it's mortal. Isiliye Baba kehte hain ki try to know who you are. Aur agar hum itna sa bhi ek prashna apne aap mein puchhege ki what am I? Who am I? So I am a soul. That's what Sister Shivani also said, that I am a soul. But we often forget that. आप देखिए ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में हम कितनी प्रिपरेशंस करके आते हैं. घर से निकलते हैं तो टिकट्स निकलवाते हैं, फिर हम बैग तैयार करते हैं, हमारे ड्रेसेस कौन से पहनने हैं, हमें कौन से दिन क्या ये लगेगा वो लगेगा, खाना वाटर ये वो, पैसे चेकबुक my PAN card, my ID proof, everything. हम कितनी preparation से एक हफ्ता पहले करते हैं, but we fail to prepare for the final journey of our life. जबकि हमें पता है कि हमें इस mortal body को एक दिन जाना है, तो इसके लिए भी मैं preparation करूं कि by introspecting कि मैं कौन हूँ. So I am a peaceful soul. मैं सिस्टर शिवानी ने जो कहा वो मैं रिपीट नहीं करूंगी. आई एम अ पीसफुल सोल. अगर आप अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, एक सत्य घटना बनी थी काफी कुछ साल पहले, सुनामी हुई थी और साउथ ऑफ इंडिया में बहुत नुकसानी हुई थी, केरला वगैरह स्टेट में. तो एक इंसान जो कि बहुत ही विद्वान था, काफी सारी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थी, बहुत ही पैसे वाला था, इतनी सारी डिग्रीज थी उसके पास, तो उसने अपना सब कुछ वो सुनामी में खो दिया. इट वॉज अ डिवास्टेटिंग ट्रेजेडी और सब कुछ उसने खो दिया, लेकिन उसने अपनी पेशेंस नहीं खोई, उसने अपनी शांति नहीं खोई, उसने अपनी खुशी नहीं खोई. तो जो लोग बचे थे उसमें से जो बच गए थे और उसको देखते थे और कहते थे कि तुम्हारी तो वाइफ भी इसमें चली गई, बच्चे भी चले गए, पैसे, तुम्हारा बिल्डिंग भी टूट गया, बंगलो भी टूट गया, सब कुछ गया, लेकिन फिर भी आप इतने शांत और खुश क्यों है? आपको पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, यस, आई लॉस्ट एवरीथिंग इन दिस डिवास्टेटिंग ट्रेजेडी, बट आई फाउंड समथिंग एक्सिलरेटिंग एंड अपलिफ्टिंग, कि मैंने अपने आप को खोजा, ये सब मेरे से छूटने के बाद मुझे पता चला कि मैं कौन हूं, तो मैंने अपने आप को खोजा, तो ये वजह है कि आज मेरे मन में शांति है, मेरे मन में. सो व्हेन यू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ दैट इज एन इमॉर्टल सोल, आई थिंक यू ऑल योर एगनीज ट्रॉमा वो सब वैनिश हो जाते हैं. एंड दैट्स अ ग्रेव ग्रेव नेसेसिटी, हमारे लाइफ की पेशेंस, हमारे लाइफ की थिंकिंग पावर. और लेक्चर्स में मुझे दृष्टांत, क्योंकि स्टूडेंट्स को इतने साल से पढ़ाया है तो वो एग्जाम्पल्स देने की आदत छूटती नहीं है. तो हाउ अ पर्सन मेंटेन्स बैलेंस, और ये और एक सत्य घटना है सन 1881 की, 1881. और एक क्लासरूम में एक प्रोफेसर पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को, तो सारे स्टूडेंट्स ऐसे बैठे थे, तो प्रोफेसर ने एक स्टूडेंट को कहा कि यस यू स्टैंड अप, उनको उठाया और उसको कहा कि आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, कि क्या परमात्मा ने ये सारी यूनिवर्स या सृष्टि बनाई है? तो स्टूडेंट काफी होशियार था, उसने कहा बिल्कुल, ये तो परमात्मा ने ही सृष्टि बनाई है, इट इज गॉड हु हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स. तो प्रोफेसर ने उसको पूछा कि सब कुछ अगर सृष्टि परमात्मा ने बनाई है तो क्या ईविल या दुख भी परमात्मा ने बनाया है? तो वो स्टूडेंट खामोश हो गया, चुप हो गया, और प्रोफेसर ने उसको बिठा दिया, वो बैठा, वापस उठा और उसने प्रोफेसर के से कहा कि सर मुझे भी आपको कुछ प्रश्न पूछना है. तो प्रोफेसर ने कहा, यस माय चाइल्ड कैरी ऑन, आस्क मी व्हाट यू वांट टू आस्क मी. और वो स्टूडेंट ने उसे पूछा, सर डज कोल्ड एग्जिस्ट, ठंड है कि नहीं सृष्टि में? तो प्रोफेसर ने कहा, इतनी ठंडी तो लग रही है, सबने जैकेट्स पहने, सबने वुलन्स पहने, तुम्हें ठंडी नहीं लग रही है? यस कोल्ड डस एग्जिस्ट. तो वो स्टूडेंट ने कहा, सर आई एम सॉरी यू आर रॉन्ग, कोल्ड डजंट एग्जिस्ट, इट्स द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट, एंड सो यू कांट से कोल्ड एग्जिस्ट, इट्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट. तो उसने कहा कि सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन. तो प्रोफेसर ने कहा, ठीक है पूछो. सर डज डार्कनेस एग्जिस्ट, डज डार्कनेस एग्जिस्ट? प्रोफेसर ने कहा, हाँ, दिन के बाद रात होती है, रात को इफ यू सी यू कांट सी एनीथिंग, सो डार्कनेस एग्जिस्ट. तो स्टूडेंट ने कहा, सर आई एम सॉरी, आप वापस गलत बता रहे हो, यू आर स्टिल अगेन रॉन्ग. उसने कहा, इट्स नॉट डार्कनेस दैट एग्जिस्ट, इट्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट. तो प्रोफेसर एकदम अचंभित रह गए, तो तुम कहना क्या चाहते हो? उसने उस स्टूडेंट से पूछा. तो स्टूडेंट ने कहा, सर जस्ट एज कोल्ड डजंट एग्जिस्ट, इट्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट, जस्ट एज डार्कनेस डजंट एग्जिस्ट, इट्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट, सो ऑल्सो ईविल डजंट एग्जिस्ट. क्योंकि वो प्रोफेसर ने उससे पूछा था कि ईविल है कि नहीं, पाप है कि नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट, इट्स एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ इन गॉड, इट्स एब्सेंस ऑफ एडमिटिंग कि ट्रस्ट, देर इज गॉड एग्जिस्टिंग, ट्रस्ट एंड फेथ इन गॉड. और दैट स्टूडेंट वॉज नन अदर देन स्वामी विवेकानंद. आप समझ सकते हो कि इतनी यंग एज में उनकी पावर कैसी थी कि उसने उस प्रोफेसर से ऐसे प्रश्न कर दिया था. तो इमेजिन, दिस इज हाउ life is, this is how you know you can one as a professor learns even from a student. To usne kaha ki okay, I agree my child, what you are saying is right. Late APJ Abdul Kalam, jo ki Bharat desh ke प्रेसिडेंट थे, उनसे आपने, आप में से कई सारे लोगों ने विंग्स ऑफ फायर पढ़ी होगी, उसमें से आप अगर पढ़ोगे तो इट्स वेरी ऑल इसरो के सारे, क्योंकि मैंने वो बुक का रिव्यू लिखा था तो उसमें काफी टेक्निकल टर्म्स है जो हमारी समझ में, शायद कोई पढ़ेगा उसकी समझ में उतना नहीं आएगा, बट वन कैची टर्म जो पूरी किताब में थी ही वो उन्होंने कहा था कि देर इज अ नेक्सस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस टू। आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम की लास्ट सांस लेक्चर देते देते गई और वो वैल्यूज को बहुत महत्व देते थे, इम्बाइबिंग वैल्यूज। जब वो प्रेसिडेंट बने, उनकी अपॉइंटमेंट आ गई, जब उनको ओथ लेना था तब वो 10x10 की रूम में लुंगी में बैठे थे, वो लड़का जो उसको रोज कॉफी देने छोटा सा आता था वो हंसते हंसते अब्दुल कलाम की तरफ देखता था कि आज तो इनके लिए बड़ा दिन है। वो समझ गए कि उस लड़के को पता है कि आज मैं प्रेसिडेंट की ओथ लेने वाला हूं। उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, थैंक यू कह के उन्होंने अपनी कॉफी ले ली। हम में से कितने लोग ऐसे कर सकते हैं? सी वी बिकम जजेस, वी बिकम प्रोफेसर्स, हेड्स, वाइस चांसलर्स, क्या क्या हम, अगर तो हाउ मच ऑफ ईगो वी हैव विद इन अवर सेल्फ। लेकिन ये देखिए, तो उन्होंने अपनी पूरी विंग्स ऑफ फायर में लिखा है देर इज अ नेक्सस बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। लीगल फील्ड में देर इज अ नेक्सस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ। तो ये जो बैलेंस बिटवीन लव एंड लॉ है ये इसमें भी मौजूद है। बट एज आई टोल्ड यू दैट यू नो हैविंग नोन कि एक दिन हमारा ये मॉर्टल शरीर एक दिन खत्म होना ही है, वी ऑफन फॉरगेट इट। भगवत गीता के चैप्टर 2 टेक्स्ट 28 का ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यते न त्वमा शोचितम अर्हसि। वन who is born is sure to die and after death a person is sure to take birth again। जीवन के बाद मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर से जीवन निश्चित है। Therefore in this unavoidable discharge of duty you should not lament। Death is inevitable, it can come to a person any time, कभी भी आ सकता है। वो चाबी तो ऊपर वाले ने अपने हाथ में ही रखी है, हमें पता नहीं। हमारे जन्म की तारीख हमें पता नहीं थी और हमारी मृत्यु की तारीख भी हमें कुछ पता नहीं है। सो डेथ इज इनेविटेबल, इट डजंट गिव यू नोटिस। ऊपर वाला कहता नहीं है कि देखो तैयार रहना, आज के बाद एक महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु होने, किसी को नोटिस नहीं। आज एक घड़ी के बाद क्या हो सकता है हमें कुछ पता नहीं। So death is inevitable, it can come to a person any time without notice and therefore is a dire necessity that you should not lament। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा भगवत गीता के इस चैप्टर 2 टेक्स्ट 28 में। तो जब हम ये बात करते हैं कि मेडिटेशन हाउ वैल्यूएबल, हाउ कैन इट हेल्प, और इसके लिए मैं आपको और एक उदाहरण देती हूँ कि अपने जो वाइजेस है, एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने एक स्पिरिचुअली साउंड इंसान को पूछा डू यू एक्सरसाइज, तो उस इंसान ने कहा यस आई डू एक्सरसाइज, आई एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट ओवर 5 विकार्स। बाबा कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेंट ओवर दोज 5 विकार्स is also one of the prominent exercise for our soul। शरीर की exercise gymnasium में दौड़ लगाने से, हम बहुत योगा करने से, that's all for the physical health, but we need to exercise as that there would be nutrition towards our mind, so you need to exercise certain restraints as well, so that is restraint over these 5 विकार्स। बाबा हर रोज की मुरली में हमें यह सिखाते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सिस्टर हैज कम, आई नो आई हैव टू वाइंड अप एट 6:30, बट आई विल अवेल माई फुल 7 मिनट्स टाइम अप टू 6:30 एंड क्योंकि मेरा सेशन भी थोड़ा लेट शुरू हुआ है, तो आई विल गिव यू जस्ट वन एग्जाम्पल विच इज एन एग्जाम्पल इन इटसेल्फ कि हमें किस तरह से अपने वाइजेस पे रिस्ट्रेंट लगानी है, रोक लगानी है। एक बहुत ही विद्वान चाइनीज फिलोसोफर थे और वो इतने विद्वान थे कि उनकी नॉलेज, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग से कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता था। फिर उनको एक दिन खबर मिली कि कहीं पे भी एक थ्योरी इवॉल्व हुई है जो उसकी नॉलेज से भी ज्यादा नॉलेजेबल है। तो वो काफी डिस्टर्ब हो गए क्योंकि उसको लगा मुझसे तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता, मेरी नॉलेज सबसे ज्यादा है। तो वो एकदम इम्बैलेंस हो गए, वो एकदम चिंतित हो गए, उसको लगा ये कहाँ। और बताया गया कि एक जेन स्कूल है कहीं किलोमीटर्स दूर, एक जेन स्कूल में वो थ्योरी इवॉल्व हुई है। तो उसने तय कर लिया चलो मैं वो जेन स्कूल में जाता हूँ। और वो गए उस जेन स्कूल में, मुझे मालूम करना है कि मेरी नॉलेज से ज्यादा वो कौन सी थ्योरी है। और वो गए वहां उस जेन स्कूल के मास्टर से, उसने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि मेरी नॉलेज से भी ज्यादा आपके यहाँ थ्योरी इवॉल्व हुई है, तो वो क्या है मुझे जल्दी से बताओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो वो जेन मास्टर ने कहा कोई थ्योरी वो तो एकदम सिंपल है, मैं आपको एक सेंटेंस में वो थ्योरी बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा जल्दी बताओ वो क्या है। तो जेन मास्टर ने कहा वो थ्योरी यह है कि टू अवॉइड डूइंग ईविल डू एज मच गुड एज यू कैन, कि अगर हमें बुराई को अवॉइड करना है तो जितना हो सके उतना अच्छा करो, करते जाओ। टू अवॉइड डूइंग ईविल डू एज मच गुड एज यू कैन। तो वो बिल्कुल, ये जो थे चाइनीज फिलोसोफर, एकदम लाल चोर गुस्से में आ गए और वो जेन मास्टर से कहने लगे व्हाट नॉनसेंस आर यू स्पीकिंग, डू यू आर सेइंग समथिंग विच इवन अ 3 or a 5 year old चाइल्ड कैन बाय हार्ट से, टू सबको पता है टू अवॉइड डूइंग इवल डू एज, उसमें कौन सी नई बात है और उसमें आप ये नई थ्योरी क्यों बता रहे हो। तो जेन मास्टर ने उससे कहा कि आप ठंडे जरा हो जाओ, आपने ठीक कहा कि एक 3 साल का बच्चा या 4 साल का या 5 साल का बच्चा ये बाय हार्ट कह सकता है कि टू अवॉइड डूइंग ईविल डू एज मच गुड एज यू कैन, बट कंसिडर सर कि एक 3 साल का बच्चा अगर ये मगअप इजीली कर सकता है ये सेंटेंस, लेकिन आप 80 साल के विद्वान हो तो आपको ये, आपको ये इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल हो रहा है, ये एक्सेप्ट करना आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। तो ये एक बड़ी सीख थी कि एक चाइनीज फिलोसोफर को उसने कैसे समझाया कि एक 3 साल का बच्चा भले ही बाई हार्ट करता होगा, लेकिन अगर एक 80 साल के विद्वान, जो कि एक विद्वान माने जाते थे, उसको ये एक्सेप्ट करना कि मुझसे भी आगे कोई बढ़ सकता है, वो कितनी मुश्किल की बात उनके लिए रही होगी। तो वो समझ गए और फिर वहां से चले गए। एंड जब हम मेडिटेशन एंड इंटरसेक्शन, जैसे कि लिंकेजेस सब में है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन एंड जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म में, सबसे पहले दिन जस्टिस नायक सर ने रविंद्रनाथ टैगोर जी का कोट किया था, वो मुझे भी बहुत 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 पसंद है। तो वी नीड टू थिंक ऑफ सच अ वर्ल्ड, आप देखिए कि उनका विजन क्या था कई साल पहले मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी का, कि हाउ शुड इंडिया बी, व्हाट फ्रीडम, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फंडामेंटल राइट है, वो कैसा फ्रीडम होना चाहिए। तो उसी शब्द से मैं काफी सारे कुछ सोच के आई थी, वो फिल्म चल रही थी उसमें 10 मिनट मेरी थोड़ी ज्यादा निकल गई इंट्रोडक्शन और फिल्म में, तो मैं एंड अप करूंगी। दीदी जी आ गए हैं। तो उनका विजन ये था कि व्हाट इज अ ट्रू फ्रीडम, एज सर हैड पॉइंटेड आउट द अदर डे एंड ही जस्ट एक्सप्लेन टू अस, हिज विजन वाज दैट वी नीड टू हैव सच अ वर्ल्ड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic wall, where the words come out from the depth of truth, where the striving thrives its way into the, you know, narrow desert as such, where we can think of such a situation where the Almighty gives us the power and to widen the scope of our thought and our action as such. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake, where wisdom prevails, where knowledge prevails, where value prevails. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. So if we have to awaken ourselves, I think it is this where we need to learn. We are all most fortunate ki hame ye opportunity mili hai ki hum yahan aaye hai is 3 din ke sessions mein jahan hum law nahi padhenge, law ka kuch stray reference hoga, but we cultivate these values and we try and we imbibe these values which will bring about a change in the personality of a person, and that will ensure that justice is done to all without any discrimination. Aur ant mein Free India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ke shabd, the service to our nation means the service to millions of people who suffer. It is not just to self, it's to the millions of people who suffer. That can be done by eradication of poverty, ignorance, disease and inequality. And the ambition of the greatest man of our time was to wipe the apostle of peace, father of the nation, Mahatma Gandhi, was to wipe every tear from every eye. Koi bhi dukhi na ho. To wipe every tear from every eye. आप में से प्रश्न मन में आता होगा कि कैसे हम सबका दूर दुख करें, हमने थोड़ी ठेका ले रखा है. बट एज लॉन्ग एज द टीयर्स एंड सफरिंग कंटिन्यू, द वर्क शैल नॉट बी ओवर. आई थिंक वी एज लॉयर्स, वी ओ सम ड्यूटी एज लॉयर्स, बीइंग इन द लॉ फील्ड, वी ओ सम ड्यूटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, एटलीस्ट बाय वे ऑफ टेकिंग और हैविंग अ टेकिंग अ कैरी होम मैसेज एज सच. These values can be taken and it can be passed on by way of judgments, by way of, you know, conversing with the clients, by way of teaching students, by way of discussions with people whosoever you meet, and pass on these vibrations of values, which I, as I told you all just yesterday, that, you know, I have personally classified it into personal values, moral or social values, स्पिरिचुअल वैल्यूज और बिहेवियरल. हमारा एक दूसरे के प्रति क्या बिहेवियर होता है. सो थैंक यू एंड ओम शांति. दीदी जी इज योर, आई टेक दिस लिबर्टी.